शतरंज के खिलाड़ी, यह कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा है। वाजिद अली शाह का समय था, लखनऊ विलास के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की पिनक ही के मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद को प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में, सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तु और चिनक बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त था। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है, कहीं चौरस बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियाँ ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज ताश गंजीफा खेलने में बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। यह दलील जोर के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों में दुनिया अब भी खाली नहीं है, इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीरा रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरों थी, जीविका की कोई चिंता ना थी, घर बैठे चखोतियाँ करते, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दिनों दोनों मित्रों नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते थे। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर के बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है, यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावरची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर इस बात न थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश हो। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नृत्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुद ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दिन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग यह तक कि मिर्ज़ा की बेगम इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोचती रहती थी, तब तक उधर बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा भी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी, क्या पान मांगे है, कह दो आकर ले जाए, खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलावे। पर रूबरू वह कुछ ना कह सकती थी, उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौड़ी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाए, दौड़ जल्दी कर। लौड़ी गई तो मिर्जा ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम का मिजाज गर्म था, इतनी ताहब कहा कि उन्हें सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे, चेहरा सुर्ख हो गया। लौड़ी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही कश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झल्लार कर बोला, क्या ऐसा दम लबों पर है, ज़रा सब्र नहीं होता। मीर ने कहा, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती है। मिर्जा ने कहा, जी हाँ चला क्यों ना जाऊँ, दो किश्तों में आपको मात होती है। मीर ने कहा, जनाब इस भरोसे में ना रहिए, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहे और मात हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा, इसी बात पर मात ही करके जाऊँगा। मीर ने कहा, मैं खेलूँगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाफ नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर ने कहा, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन ना आवेगे मैं मुहरे में हाथ ना लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरिया बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें ने गोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते, नौस कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा ने कहा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू ही, वैसे है सबको समझते हैं, उनकी भी बाल बच्चे है या सबका सफाया कर डाला है, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है, दुत्कार क्यों नहीं देते, बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे दो अंगुल ऊंचे, मुहालजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज़ हो जाएंगे, हो जाए, कौन किसी की रोटियाँ चला देता है, रानी रुठेगी अपना सुहाग लेगी, हीरिया बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। हाँ हाँ कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या, ठहर हीरिया कहाँ जाती है। बेगम ने बोला, जाने क्यों नहीं देते, मेरे ही खून पिए, जो उसे रोके, अच्छा उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। यह कहकर बेगम साहिया इल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने ना मानी, दीवान खाने के द्वार तक चली गई पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पाँव बंद गए। भीतर झाका, संयोग से कमरा खाली थी। मीर साहब ने दो मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई बताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर और किवार अंदर से बंद करके कुड़ी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे और मुहरे बाहर फेंके जाते थे, चूड़ियों की झनक भी कान पर पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम बिगड़ गई, घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी, इतनी लौ खुदा से लगाते तो क्या गरी हो जाते, आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हा चक्की की फिक्र में सिर छुपाऊँ। बोलो, जाते हो हकीम के यहाँ कि अब भी तमल्लु है? मिर्जा घर से निकलने तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वित्रांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताजड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यो सिर पर चढ़ा रखा है या मुनासिब नहीं? उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उनको क्या सरोकार? मिर्जा, खैर यह तो बताइए, अब कहाँ जमावोगे? मीर, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा है, बस यही जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहब को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब वो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगा तो शायद जिंदा ना छोड़ेगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बैग किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती, बल्कि कभी-कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों में से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है, लेकिन जब दीवान खाने से बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा, उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरसती जाती। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगा। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे, घर में चाहे कोई आवे चाहे कोई जाए, उन्हें कुछ मतलब ना था। आठों पहर की धौंस हो गई, कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहब से जा जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाल पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम की कर दी घड़ी आंध, घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हो, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आता है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आप की बुराई सुन सुनकर रंग होता है, मगर क्या करे। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं है, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज, यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली जाती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था, कमली दिन दिन भीख पर भारी होती जाती थी। देख में सुव्यवस्था ना होने के कारण वार्षिक कर भी ना वसूल होता था। रेसिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कान में जू तक ना रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खान में शतरंज होते महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते भीड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठ कर अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई, यह तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकर से बोले, कह दो घर में कोई नहीं। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊँ, हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरे भी तलबी ना हो। मीर, कमबख्त कल आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने ने नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धत्रा बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज पर चली, अब भूलकर भी घर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर के निकल पड़े थे। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिल्लोरिया भरे, गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसके शायद नवाब आस फौदल्ला ने बनाया था। रास्ते में तंबाकू चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का पर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती थी, किस शहर आदि तो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था, कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर कर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसका ज़रा भी फिक्र ना थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह ना पड़ जाए, इसी नहीं तो बेगार में पकड़े जाए, हजारों रुपये सालाना जी जागिर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी, मीर साहब को किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, लो या किश्त। मीर, तौर खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे जवान है, लाल बंदरों से मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा जनाब हीले न कीजिए, यह चखमे किसी और को दीजिएगा। यह किश्त मीर आप भी अजीब आदमी है, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे? मिर्जा जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी यह किश्त, बस अब की शहर में मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिज गई। मिर्जा बोले आज खाने की कैसी ठहरेगी? मीर अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको भूख ज़्यादा मालूम होती है? मिर्जा जी नहीं, शहर में जाने क्यों हो रहा है? मीर शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमज़ोर थी, 4 का गज़र बज रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीति अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा हुजूर नवाब को जालिमों के कैद कर लिया है। मीर होगा या लीजिए शहर? मिर्जा जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर रोया ही चाहे या ऐश वहां कहां नसीब होगा या किश्त? मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं जाते, इतनी दर्दनाक हालत है। मीर हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किश्त, बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द है, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिए, या किश्त और मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है, मीर ने कहा आइए नवाब के मातम में मरसिया कह डाले, लेकिन मिर्जा की राज भक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। शाम हो गई, खंडहर में चमगादड़े के चीखने शुरू किया। अबाबिले आ आकर अपने घोंसलों में चिपटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हो। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे, इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा ना था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेदब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा रहे हो। मिर्जा सुन सुनकर झुल्लाते और हार के झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। जो जो बाजी कमजोर पड़ती थी धैर्य हाथ से निकलता जाता था, यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलने लगते। जनाब आप चाल ना बदल कीजिए, यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया जाए? जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए, या आप मुहरे पर ही क्यों हाथ रखे रहते हैं? मुहरे छोड़ दीजिए, जब तक आपको चाल ना सूझे मुहरा छूए ही नहीं। आप एक एक चाल आध आध घंटे में चलते हैं, उसकी सनद कही जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहर वही रख दिए। मीर साहब की फर्जी पिटता था, बोले मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वही रख दीजिए उसी घर में। मीर उसमें क्यों रखूं, हाथ में मुहरा छोड़ा कब था? मिर्जा, मोरा आप कयामत तक ना छोड़े, क्या चाल ही ना होगी, फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो उसी बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी। मिर्जा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं, नहीं रखता। मिर्जा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न यह दबता था न वह, अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो उसके कायदे जानते, वो तो हमेशा घास छीला किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास, आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं, रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालीख लगाते हो, वे बावर्ची का काम करते होगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरखटे, बहुत बढ़कर बातें ना कर। मीर, जबान संभालिएगा वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं, यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकालती है हौसला। मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं, तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है। दोनों दोस्तों में कमर से तलवारें निकाल ली, नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकब्ज कटार वगैरह बांधते थे, दोनों विलासी थे पर कायर न थे, उनमें राजनीतिक भाव का अध पतन हो गया था, बादशाह के लिए क्यों मरे पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चिमकी, छपाछप की आवाज आई, दोनों जख्मी होकर गिरे, दोनों ने वही तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना निकला, उन्होंने शतरंज के वजीर का रक्षा में प्राण दे दिया। अंधेर हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, खंडर की टूटी हुई मेहराबे, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरी तो मीनारे इन लाशों की को देखकर और सिर धुनती थी।